नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी व टीजीटी के 5000 से अधिक पद खाली, 764 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा, एड्स नियंत्रण संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित करने का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करेगी सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पकड़ी आर्थिक रफ्तार, पहली तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी और टीजीटी के कुल 5209 पद खाली हैं। शिमला में 3 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन कुमार काजल, हंसराज जीतराम कटवाल और दलीप ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेबीटी के सबसे अधिक 4019 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक टीजीटी के कुल 1190 पद रिक्त थे और इनमें से 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जा रहे टीजीटी के 13 पदों के अलावा किसी अन्य पद के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में एड्स नियंत्रण संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन संस्थाओं में 414 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन साल दर साल अनुबंध समझौते के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। विधायक हरदीप सिंह बाबा के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आशा वर्करों को भविष्य में नियमित करने के लिए सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यक्रम एनएचएम के दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आशा वर्करों के लिए स्थायी नीति का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होते ही पूर्व विधायक राम रतन शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम रतन शर्मा नादौनता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे और बाद में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर बड़सर हुआ। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हमीरपुर जिला के चकमोह में हुआ था। वे लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे तथा सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राम रतन शर्मा भाजपा और उससे पहले आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में राम रतन शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राम रतन शर्मा 2 बार भाजपा के विधायक रहे और वे कर्मठ व जुझारू व्यक्ति थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राम रतन शर्मा अपने इरादों के पक्के थे और जो ठान लेते थे उसे समर्पित भाव से पूरा करते थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी खुद को शोकोद्गार में शामिल करते हुए दिवंगत राम रतन शर्मा के योगदान को याद किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि अधिकारियों को जबरदस्ती नैनो यूरिया प्लस ना देने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में नियम 62 के अंतर्गत विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि यूरिया के साथ नैनो यूरिया को भी किसानों को जबरदस्ती खरीदने पर विवश किया जाए। उन्होंने कहा कि इफको की ओर से भी ऐसा लेटर दिया गया है जिसमें किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया नहीं देने की बात कही गई है और इस संबंध में हिमफेड को भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करने पर विचार किया जाएगा। आज शिमला में प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने मोबाइल रिसोर्स सेंटर थेरेपी ऑन व्हील्स की पहल के तहत 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर वाहनों को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पहल प्रारंभिक चरण में 3 जिलों मंडी, शिमला व कांगड़ा में संचालित की जाएगी। इधर शिमला स्थित एकीकृत कमांड व नियंत्रण केंद्र और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में स्थापित त्वरित घटना रिपोर्टिंग प्रणाली के विभिन्न निगरानी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न डैमों से पानी छोड़ने और बरसात के दौरान नुकसान की स्थिति का स्टीक डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुई है। जयराम ठाकुर ने इस वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अप्रैल से जून की तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 81,36,000 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 75,46,000 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% वृद्धि दर्ज हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये आंकड़े भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय जनता को दी गई 10 गारंटियां अभी भी धरातल पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने, युवाओं को हर साल 1,00,000 रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित बड़े बड़े वायदे कर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब यही गारंटियां सरकार के लिए गले की फांस बन गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल के बाद भी सुक्खू सरकार इन गारंटियों को पूरा करने की बजाय बहाने बना रही है, जिससे स्पष्ट है कि ये वायदे केवल चुनाव जीतने का राजनीतिक हथकंडा थे। हिमकेयर योजना को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस योजना ने प्रदेश के आम परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया था, उसकी व्यवस्था को भी सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने 10 गारंटियों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी कर हर गारंटी की स्थिति सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 17 सितंबर को हर घर में सेवा नाम और 2047 विकसित भारत के संकल्प का दीप जलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और स्कूलों में पेंटिंग, भाषण व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बिंदल ने बताया कि अभियान के तहत महिलाओं द्वारा विकसित भारत 2047 और मोदी जी के जीवन पर सेवा संकल्प रंगोली बनाई जाएगी।
17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने का सेवा संकल्प अभियान ये चलाए, विकसित भारत का संकल्प की एक यात्रा और सेवा ज्योति यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, देश का प्रत्येक व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी सेवा में मेरा योगदान ये अभियान चलाएगी, जिसमें अनेक अनेक प्रकार से सेवा के अभियान हो सकते हैं। वो स्वच्छता सेवा के हो सकते हैं, रक्तदान शिविर के हो सकते हैं, चिकित्सा सेवा के हो सकते हैं।
प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 76 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 5 बिजली ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग द्वारा 2 सितम्बर को शिमला, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों और 3 सितम्बर को कांगड़ा व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी व डीजीटी के 5000 से अधिक पद खाली, 764 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा, एड्स नियंत्रण संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित करने का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करेगी सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पकड़ी आर्थिक रफ्तार, पहली तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।